सुनो कहानी श्रृंखला में आइए सुनते हैं स्वाति तिवारी की कहानी वेतरणी के पार। इस हफ्ते भी बाबूजी से मिलने नहीं जा पाई थी। परीक्षा का समय चल रहा है, घर में बच्चों का भी और कॉलेज में भी। प्रिंसिपल चाहते हैं कि एकदम व्यवस्थित ढंग से निपट जाएं ग्रेजुएशन के पेपर। ग्रेजुएशन के पेपर विशेष करके इसलिए क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के पेपर्स अच्छे से हों। पोस्ट ग्रेजुएशन में संख्या कम होती है तो उतनी व्यवस्थाएं मुश्किल नहीं होती। पिछले साल से मुझे परीक्षा कमेटी में रख दिया गया। घर में चिंटू और बबली के भी पेपर चल रहे हैं। चिंटू का तो ठीक है, पर बबली का सेकंड सेमेस्टर। व्यस्तताओं के कारण मैं पूरे 25 दिन से बाबूजी से बात नहीं कर पाई। फ़ोन करती हूँ तो भाभी फ़ोन उठा लेती हैं, यहाँ वहाँ के हालचाल पूछती और बाबूजी ठीक हैं कहकर बात खत्म कर देती। महानगरी सा फैलता शहर, एक कोने से दूसरे कोने तक सारा शहर रोनते हुए जाना होता है। परीक्षा खत्म होने के बाद सुदूर विजयनगर से चंदन नगर तक पहले टेम्पो से, फिर नगर सेवा से और चंदन नगर थाने के पास से ऑटो पकड़कर घर लौटते लौटते मैं बेतरह थक जाती हूँ। घर पहुँचकर भी कुछ खास करने का मन नहीं होता, लेकिन गृहस्थी के काम किए बिना चलता भी तो नहीं है, ना करूं तो कौन करेगा। सुबह तो सुनीता आती है, झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है और हफ्ते में एक दिन कपड़े भी डाल देती है। सब्जी जयेश कटवा लेते हैं। चिंटू बबली तो दूध चाय इत्यादि खुद गर्म कर लेते हैं, पर शाम होते होते सब थक जाते हैं। सुनीता भी एक ही समय आती है। चूँकि सुबह के वक्त मुझे कॉलेज जाने की जल्दी होती है और गृहस्थी में मैं जरा भी समय नहीं दे पाती, इसलिए शाम को थोड़ा सा आराम करती हूँ और रात को पूरा ध्यान घरेलू व्यवस्थाओं को फिर व्यवस्थित करने में और चिंटू के होमवर्क को देती हूँ। जब कभी सासू जी आ जाती हैं तो काम में काफ़ी हाथ बटवा देती हैं, लेकिन कितना, महीना दो महीना बस, फिर तो खुद को ही करना होता है। तो सोचती हूँ कि खुद ही करती रहूँ, क्योंकि आदतें बिगाड़ लेने से बाद में मुझे ही दिक्कतें आती हैं। हफ्ते में एक दिन शनिवार को जयेश का ऑफ होता है, उसी दिन जयेश मुझे लेने पहुंच जाते हैं और यहीं से मैं मायके बाबूजी से मिलाती हूँ। अम्मा थी तो चिंता नहीं थी, सारा घर अम्मा के रोबदाब से डरता था और अम्मा का सारा लक्ष्य बाबूजी के आसपास केंद्रित होता था। पर जब से अम्मा गई सारा घर जैसे बेरौनक हो गया है। बड़े भैया भाभी हैं, छोटे भैया भाभी भी हैं, पर अब घर घर नहीं तीन टुकड़ों में बटा हुआ अलग अलग लगने लगा है। दोनों भाभी अपनी दुनिया ऊपर वाली मंजिल पर फैलाए हुए हैं और बेचारे बाबूजी अकेले नीचे रहते हैं। यूं तो रसोई घर और बैठक भी नीचे ही है, पर वह समय समय पर खुलती है और बंद हो जाती है। आज कॉलेज में पेपर आउट हो गया था, इसलिए अब वह पेपर क्योंकि बाद में होगा तो मुझे कॉलेज से जल्दी फुर्सत मिल गई। जयेश को फ़ोन कर देती हूँ कि मैं यहीं से आज बाबूजी के पास जा रही हूँ। घर पहुँची तो देखा बाबूजी दूध गर्म कर रहे हैं। अरे बाबूजी, आप आज रसोई में? आश्चर्य से पूछती हूँ। हाँ बेटा, मैं देख रहा था कि रसोई में काम कैसे करते हैं। बाबूजी टाल गए। चला अंदर आ, बैठ मेरे पास बातें करते हैं। वे दूध का गरम ग्लास पकड़े कमरे में जाने लगे, मैं भी पीछे पीछे चलने लगी। आज आप अकेले हैं क्या? नहीं तो, तो फिर ये दूध गरम करना पड़ रहा है, भाभी नहीं है क्या घर में? बड़ी को तो गणगौर है, तो पियर जाना था जिम ने, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है, और छोटी का सिर दर्द कर रहा है तो सोई है ऊपर अपने कमरे में। बच्चों को पोहा बना दिया था उसने, वह कहाँ मनाती है गणगौर वगैरह। अब क्रिश्चियन लड़की है, हर त्यौहार पर केक से काम चला लेती है, उसे गणगौर हो या गुड़ी पड़वा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दूध में उंगली डाली और तातेपन का अंदाज किया, फिर कहने लगे, ला जरा लकड़ी की अलमारी में से ब्रेड निकाल दे, आजकल ब्रेड का पैकेट भी दूध के पैकेट के साथ ही आ जाता है। ला एक दो स्लाइस खा लेता हूँ दूध से। बाबूजी आप और ब्रेड? बाबूजी, आप तो ब्रेड खाते ही नहीं थे, ये ब्रेड का स्वाद कब से लगा लिया आपने? मैंने हंसते हुए पूछा। अरे बच्ची, ब्रेड में भी कोई स्वाद होता है क्या? वो तो ब्रेड से पेट भर जाता है। वो छोटी लाड़ी का कहना है कि ब्रेड जल्दी हजम हो जाती है, इसलिए ब्रेड खा लिया करो। मैंने अलमारी खोली, 2 दिन से रखी चमड़े जैसी चीठी चिमड़ हो गई थी ब्रेड। बाबूजी, यह कब की है? मैंने ब्रेड सूंघते हुए पूछा था। ताजी है, कल सुबह ही तो दे गया था बंदी वाला, एक दिन छोड़ कर लेता हूँ। क्या? हाँ चल बता, इतने दिनों तक कहाँ अटकी थी सुधा बिटिया? मैं तुझे ही याद कर रहा था, आज बहुत दिनों के बाद तू दिखी तो जैसे घर में और मन में रौनक आ गई है। बाबूजी, परीक्षा के दिनों में तो समय निकालना बड़ा कठिन काम है, आप तो जानते ही हैं कि कितनी मुश्किल से मैं परीक्षा का समय और घर मैनेज कर पाती हूँ। आज तो वो पेपर आउट हो गया था ना कॉलेज में, इसलिए जल्दी फुर्सत मिल गई तो सोचा चलो आपसे मिल के आ जाती हूँ। अरे बेटा, मैं तो समझा तू भी भूल ही गई मुझे। बाबूजी को ब्रेड का पैकेट देते देते मेरे हाथ स्वतः रुक गए। बाबूजी, आपके लिए मैं 2 पतले पतले फुलके सेक देती हूँ ना, बिल्कुल अम्मा जैसे बनते हैं आजकल मेरे हाथ के फुलके भी। रहने दे रहे, कहाँ पचेगी, कॉलेज से आ रही है। अरे बाबूजी, उसमें पचना क्या, आप दूध में डालकर चट मीठा करके गला लेना रोटी को, आपको तो दूध रोटी पसंद भी है। थोड़ा सा आटा गूंथने लगी मैं, मुझे याद आया रसोई का सारा स्वरूप ही बदल गया है। डिब्बे में शक्कर नहीं थी, तेल बड़े कनस्तर से निकालना पड़ा। सेवों की पतली सब्जी और फुलका बाबूजी के सामने थाली में रखा तो मुझे वह थाली याद आ गई जो इस घर का सबसे बड़ा कार्य और सबसे आकर्षक होती थी। सुधा ले, बाबूजी की थाली पटे पर रख दो, कहीं दूर से आती अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा को सुबह उठते ही बाबूजी की सुबह की थाली और दोपहर से ही रात की थाली में क्या रखना है इसकी चिंता हो जाती थी। सारा दिन, सारी दिनचर्या का लक्ष्य थी बाबूजी की थाली, अम्मा उसी में निहाल होती रही थी। बाबूजी सुबह शहर से लौटते अखबार पढ़ते, अम्मा खुद चाय का प्याला लेकर आती। अम्मा की दुनिया चाय और खाने की थाली थी, उसे न अखबार से लेना होता था न खबरों से। अखबार से फुर्सत होते ही बाबूजी नहाते, फिर 1 घंटे पूजा ध्यान करते और फिर अम्मा का नहा धोकर पूरी शुद्धता से बना वैष्णवी भोजन थाली में सजकर भगवान के भोग के लिए जाता। बाबूजी वहीं पटा घुमा लेते और थाली रखकर भोग की थाली में ही जीवने बैठ जाते। एक थाली वह थी जो बाबूजी के लिए गरम गरम तवे की उतरी रोटी से समृद्ध होती थी। उसमें दही, पापड़ से लेकर सूखी सब्जी, दाल भात, चटनी अचार और एक बेसन का नागौरी लड्डू भी होता ही था। फिर अम्मा चूल्हा बंद करके बाबूजी को लौंग इलायची और रुमाल देने के लिए उठ जाती थी। बाबूजी कचहरी चले जाते, फिर चलता रहता चौका चूल्हा। शाम को थाली में कभी पकौड़े वाली कड़ी होती तो कभी सुरजनी की फली वाली कड़ी, कभी बेसन का गट्टा होता तो बड़ी का झोल, कुछ न कुछ रसेदार जरूर होता। आज वही घर है, वही रसोई, वही बाबूजी हैं, पर वे कायदे कानून नहीं भोजन और रसोई के। प्याज इस घर में कभी नहीं आता था, आज अंडों के छिलके पड़े हैं। अम्मा क्या गई, जैसे रसोई की श्री ही चली गई। आँखों में अम्मा घूमने लगी और आंसू भर आए और पानी से आँखें धुंधली सी हो गई। बाबूजी के चेहरे पर एक संकोच था अपनी दयनीय स्थिति का, या मेरे सामने इस राज के खुलने का, पर उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, उन्होंने पेट भर रोटी खाई। दूध में शक्कर नहीं पड़ी थी, फीका दूध उन्हें पसंद नहीं, वे तो चट मीठा दूध पीने के शौकीन हैं। दूध उन्होंने कटोरी में ढककर रख दिया। आखिरी फुलका सेक रही थी, बाबूजी सहज भाव से बोले, आज तुझे रसोई में देखा तो तेरी अम्मा की याद आ गई। वे भावुक हो गए थे, तभी छोटी भाभी शक्कर का डब्बा हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी देखी। अरे वाह सुधा जी, आज तो खूब मक्खन लग रहा है बाबूजी को। भाभी का चेहरा जितना काला है जवान, उससे भी कहीं ज़्यादा काली। अरे नहीं भाभी, बस यूं ही मन किया, बाबूजी को रोटी खिलाने का तो सेक दी दो रोटी। चलो खिला दी तो अच्छा है, हम तो उन्हें भूखा ही मार रहे हैं दीदी। अरे भाभी कहाँ उलाहना देती हो, बाबूजी जो ब्रेड खा रहे थे ना वो तो आपका पालतू पामेरियन भी नहीं खाएगा। डाल कर देख लो जरा, चमड़े जैसी हो गई है ब्रेड और दोपहर के 3 बज रहे हैं। भाभी ने पैर पटकते हुए रसोई में प्रवेश किया। चाय बनाऊंगी, आप लोगे क्या? पर आपकी रसोई में शक्कर नहीं है भाभी, चाय में डालोगी क्या? मैं भी हंस दी। वे झेप गई, बोली अरे दीदी मकोड़े बहुत हो जाते हैं ना यहाँ, इसलिए डिब्बा ऊपर ले गई थी। मैं चाय के बाद उठने लगी। चलती हूँ भाभी, बाबूजी का ख्याल रखना। अरे बैठो बैठो, तुम अभी से क्यों जाओगी, तुम तो बाबूजी का दुख दर्द बांटो। मैं चली जाती हूँ अभी ऊपर, थोड़ी देर के बाद आती हूँ। वे जाने लगी। अरे बेटा जुलीना बैठ, तू भी और तू भी। ये ननंद भौजाई के रिश्ते बड़े खट्टे मीठे होते हैं, दोनों की दोनों उठने की बात कर रही हो। अरे उठने का समय तो मेरा है, मेरा वक्त का अब कोई भरोसा नहीं, कब उठकर चल दूँ। जितना वक्त है तुम बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। बाबूजी लेट गए वहीं पलंग पर। मैं जाने क्यों रोना रोक रही थी, पर रोना आ ही गया। बाबूजी की बात पर मुझे याद आया, अम्मा अक्सर कहती थी भगवान मुझे इनसे पहले मत उठाना, इन्होंने ऐसा वैसा खाया पिया नहीं, घर का काम कभी किया नहीं, बड़े परेशान हो जाएंगे मेरे जाने से। सोचती हूँ सचमुच बाबूजी परेशान हैं, पर देखो धैर्य, एक समय कचहरी का टाइम हमारे घर का टाइम टेबल था, मिनट टू मिनट काम होते थे, और आज का दिन बाबूजी 3 बजे तक भूखे। बातचीत में पता चला कि आजकल दोनों भाभियों ने रसोई को लेकर तनातनी है, बड़ी सुबह करती है और छोटी शाम को। झगड़ा यह है कि सुबह काम ज़्यादा होता है रसोई में, दोनों के कमरे में आजकल थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएँ होती जा रही हैं, चाय और नाश्ते तक। मैंने मन ही मन कहा अम्मा अब जल्दी ही तुम्हारी रसोई के 2 टुकड़े होने वाले हैं, दरारें पड़ गई हैं, ये थोड़ी थोड़ी चौके चूल्हे की व्यवस्थाएँ बड़ी तेज़ी से विस्तार पाती हैं, बाबूजी सुबह एक टाइम खाते हैं इसलिए सुबह काम ज़्यादा है। तर्क समझ में आया, बाबूजी के पास वहीं मैं पलंग पर बैठ गई। बाबूजी का झुर्रियों भरा हाथ सहलाते हुए एक जिद पकड़ ली थी मैंने, अब दोनों भैया के साथ रहते हो मेरे साथ क्यों नहीं, चलो ना बाबूजी थोड़े दिन के लिए। बड़ी भाभी भी जिम जिमा कर लौट आई थी। जाना चाहिए बाबूजी आपको, बेटी कमाती है, कुछ जमाई कुछ नहीं कहेंगे, बड़ी भाभी ने हाँ में हाँ मिलाई। कपड़े तोलिए, गीता रामायण जाप की माला चश्मा सब छोटी भाभी ने फटाफट बैग में डाल दिए। बाबूजी ने भी प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार अब उनकी प्रकृति में था ही नहीं। वे उठे और पूजा घर से अम्मा की तस्वीर उठा लाए। ये मेरे बगैर दिए बत्ती के यहाँ, ये यहाँ अकेली हो जाएगी, इसे भी ले चल। एक झटके से बाबूजी दरवाजे से बाहर निकल गए, उस घर उसमें बीते दिनों को दरकिनार करते हुए। आज वे गर्व से चल रहे थे, धीरे से बोले तू आ गई तो मेरा आत्मसम्मान बच गया, वरना मैं अपने दिए संस्कारों में ही ढूंढता रहता था कहाँ कमी रह गई। पर बेटी तूने मुझे आत्मग्लानी से बचा लिया, वरना मैं सूरज के उजाले में भी उस घर में फैलते अंधेरे से डरने लगा था। बेटों की नाव पर बैठकर बुढ़ापे की वेतरणी पार करने वाले समाज में बाबूजी उपेक्षा और तिरस्कार के साथ साथ अब भूख से भी गले गले तक डूबने लगे थे। ऐसे में तिनके की तरह कोई बेटी आकर आपका हाथ थामे तो उसकी उंगली पकड़ लीजिए बाबूजी। उस हाथ ने कभी आपकी उंगली को पकड़कर चलना सीखा था, सही मायनों में उस स्पर्श से ही आपके स्नेह संस्कार प्रवाहित हुए थे, वही संस्कार वही वाहक है उन संस्कारों की। धन्यवाद।